ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. جی یاسمین سعید آپ بتائیے کہ امامت کا مستحق کون ہے, کون بندہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ امامت کا مستحق ہو؟ یاسمین آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ نے اپنی لائن کھولی بھی ہے, ان میوٹ کیا؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے, چلیں میں کسی اور سے پوچھتی ہوں. شازیہ ناصر آپ بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امامت کا مستحق ہے جو دین یا سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو, جو ہجرت میں پہل کرنے والا ہو, جو عمر میں بڑا ہو.
سب سے پہلی چیز کیا ہے شازیہ, پہلی چیز جو دیکھیں گے؟ فرسٹ تھنگ,
میں بڑا ہوں.
نہیں یہ تو لاسٹ تھنگ ہے, یہ تو آخری چیز ہے جو ہم دیکھیں گے. نفیسہ شیخ آپ بتائیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
جی سب سے پہلے امامت کا حق اسے جو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہو.
شاباش شاباش, جو سب سے زیادہ, سب سے پہلے یہی چیز دیکھی جائیے کہ یعنی حافظ ہو.
نہیں سب سے زیادہ کتاب کو پڑھنے والا ہو اور سمجھنے والا ہو اور اس پہ عمل کرنے والا ہو.
جی
ضروری نہیں کہ وہ حافظ ہو.
جی ہم سوچتے ہیں نا جس کو سب سے زیادہ یعنی قرآن یاد ہے وہ امامت کرائے گا, اس میں ضروری نہیں ہے ایسا کہ جس کو سب سے زیادہ صورتیں یاد ہوں گی وہی کرائے گا تاکہ وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکے, اور وہ اس میں یہ چیز نہیں دیکھی جائے. قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی نے قرآن یاد کیا تھا ایک زمانے میں اور اس کے بعد اس کو بھول گیا ہو, ہو سکتا ہے کوئی زیادہ وقت نہ وہ قرآن کے ساتھ لگاتا ہو. تو اس لیے سب سے زیادہ جو جس کا وقت قرآن کریم کے ساتھ گزرتا ہو وہ امامت کرائے گا, اور اس کے بعد نرگس ناہید, اس کے بعد کیا دیکھا جائے گا؟ جی نرگس.
جی السلام علیکم.
جی
جی قرآن و سنت کو جاننے والا.
شاباش, قرآن و سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا,
جاننے والا, اور اس کے بعد جو ہے عمر کا ہو جائے گا, جو عمر میں بڑا,
جو ہجرت میں پہل کرنے والا, اور اس کے بعد جی. لیکن ہم دیکھا ہے سب سے زیادہ عمر کو ہی دیکھتے ہیں, یہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جو بڑا بزرگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ امامت کرائیں, چاہے ان کو قرآن کا کچھ بھی نہ پتا ہو, نہ ان کو اس کے ساتھ وقت گزرتا ہو, نہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں, اور اس کے بجائے ایک بچہ ہے جو ہو سکتا ہے کسی جگہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے اور اس کا دن رات قرآن کے ساتھ گزرتا ہے, لیکن اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہی ہے, اس کا کیا, اس کو تم بھی یہ پتا. تو اس میں سب سے زیادہ یہ تو عمر کو آپ نا سب سے زیادہ یاد رکھیں, سب لوگ عمر کو کی کافی زیادہ بتا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہمیں قرآن کا علم, قرآن کے ساتھ وقت لگانا, اس کا زیادہ پڑھنا, اس چیز کو پھر سنت دیکھیں گے. دیکھیں قرآن کے بعد سنت ہی آتی نا, آج ہجرت تو نہیں ہے لیکن اس کے بعد کہ بھائی کون پھر عمر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی عمر کا کیا, یہ کس جگہ پہ یہ دیکھا جائے گا؟ رافیہ آپ بتائیں گی.
جہاں پہ مسجد میں کہیں اور جماعت ہو رہی ہے, سمجھے گھر میں ہو رہی ہے یا بازار, مطلب راستے سفر میں اگر کہیں قافلہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ اگر جماعت کر رہے ہیں تو اس وقت امام کو چننے کے لیے یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی.
شاباش. اور اگر مسجد میں ہیں تو اب مسئلہ نہیں کہ گیسٹ کوئی آئے میں ہے تو ان کو کہا جائے کہ وہ امام بن جائے؟
نہیں, مسجد کے جو امام ہے وہی نماز پڑھانا چاہیے, اگر کوئی گیسٹ آئے تو نہیں, جو مسجد کے امام مقرر ہیں وہی نماز پڑھائے پھر.
شاباش. یعنی جو مسجد کے امام مقرر ہیں, یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں نہیں جی آج کوئی نہیں امام صاحب آپ تو پیچھے جائیں کیونکہ آج یہ بڑے فلاں جگہ سے کوئی آئے ہوئے ہیں تو یہ تو گیسٹ ہیں ہمارے, تو آج تو یہ پڑھائیں گے, ایسا نہیں. ہاں اگر امام خود کہہ دیں, ان کو آفر کریں کہ نہیں جی آپ میری جگہ پہ کھڑے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن خود سے کوئی آدمی جا کے کھڑا ہو جائے کہ میں آیا ہوں, یا لوگ اس کو کھڑا کر دیں کہ آج یہ پڑھائے گا, یہ صحیح نہیں ہے. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप के घर का दस्तरखान होता है या डाइनिंग टेबल होती है जहाँ पे आप खाना खाते हैं, या आपकी एक कोई जगह बैठने की है जहाँ पे कोई बड़ा बैठता है और ये उसकी जगह है बैठने की, ये नहीं कि कोई आया और उसकी जगह लेके बैठ जाए, या टीचर की जगह है तो अब कोई स्टूडेंट आए और वो कहे कि आज तो मैं नहीं आई हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठूंगी, ऐसे नहीं, जो जिसका मकाम जिसकी जगह है वो ही वहां पे बैठेगा, ठीक है। तो ये चीज जाननी जरूरी है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे देखा है हदीस नंबर 391 में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग, उन्होंने पढ़ा और उसके बाद वो गए और उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी अपनी जगह पे जाके दीन सिखाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या महसूस किया था इन लोगों के अंदर कि क्या, किस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जाओ और अपनी अपनी जगहों पे जाके दीन सिखाओ? नसरीन आबिद, आप बताएंगी।
जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम।
जी, उन्होंने वो महसूस किया था कि उनके दिल में शौक है कि वो वापिस अपने घर जाए,
हाँ जी, अपनी फैमिली को मिलने के, कि यानी
दिल में
फैमिली से
यानी
उदास हो गए हैं ना।
उनको समझ आ गई तो थोड़ा किसी और को भी बताएं, जैसे ये घर पे जाने का उनका था ना।
सही सही, शाबाश। यानी उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये जैसे उदास हो रहे हैं अपने घर के बगैर, तो उनको घर जाने की इजाजत दी। और आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि क्या इन्होंने कोई 7 साल का कोर्स किया, 5 साल का कोर्स किया, ये किया नहीं, जितना आता है उतना ही जाके दीन सिखा दो। इसमें ये नहीं होता कि अब आप कोर्स कोई लंबा करेंगे, दरसे निजामी का कोई कोर्स किया होगा, फलानी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होगा तो फिर किसी को कोई दीन की बात बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जितनी आपको बात आती है, समझ है, उतना बता दें। ये भी ना हो कि कोई बात की समझ है नहीं, और हमें बाज दफा बहुत शौक भी होता है सवालों के जवाब देने का, तो हम खामखा ही सब जवाब देते रहते हैं जबकि हमें इल्म नहीं होता, वो भी सही नहीं। लेकिन जिस चीज का इल्म हो उस चीज को फैलाना चाहिए। और आपने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत कितनी ज्यादा थी, कितनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केयरिंग थे, कि जब सिर्फ उनके मूड से देख लिया, सिर्फ उनके जाहिर है कोई चीज नोट की होगी, उन्होंने तो नहीं कहा कि हमें तो उदासी हो रही है, तो ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर शफीक, कितने मेहरबान थे, ठीक है ना। अकबर। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किस चीज की तलकीन फरमाई? शकील आंटी, आप बताएंगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किस चीज की तलकीन बताई? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी
क्या आप मुझसे पूछ रहे
जी
हैं?
जी आपसे ही पूछ रही हूँ।
ये आवाज बिल्कुल आ नहीं रही, कट कट के आ रही है।
अच्छा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किस चीज की तलकीन फरमाई थी जब वो ये
अपने अपने कबीले में चले जाएं और वहाँ मतलब नमाज नमाज सिखाएं और पढ़ाएं और पहले अजान दें अपने कबीले में या अपने मतलब जिस जगह पे हैं और उसके बाद फिर नमाज पढ़ाएं।
अच्छा, तो अच्छा ठीक है, शाबाश। वहां पे यानी अजान का कितना हमें यहाँ पे पता चलता है ना कि अजान देने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। अच्छा, यहाँ पे तो ये है कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से बड़ा हो वो इमामत कराए। नाज़नीन, आप इसमें क्या कहती हैं कि ये क्यों नहीं देखा कि भाई इसको ज्यादा आता है? नाज़नीन जी,
बड़े से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यही था कि जो इल्म में बड़ा है।
नहीं, ये नहीं था मतलब, बड़ा उम्र में बड़ा कहा, जो तुमने उम्र में बड़ा,
जो तुम्हें उम्र में
अखबारुकुम
बड़ा है।
अखबारुकुम, तो यहाँ पे क्यों क्यों नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुमने इल्म में बड़ा हो, क्यों ये कह दिया कि जो तुम में से बड़ा हो? अच्छा, कुलसुम आप बताएंगी।
जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी, क्योंकि वो कट्ठे आए थे वहां पर इल्म सीखने, तो जाहिर है उनमें से इल्म तो एक जितना ही था सबका, तो इसलिए
शाबाश,
उन्होंने कहा कि जब वापिस जाओ तो फिर तुम में से जो बड़ा है वो इमामत करवाए।
शाबाश। हाँ, यानी आप जब वो सारे आए हैं तो जाहिर है एक जितने दिन वहां पे ठहरे हैं, एक जितने दिन वहां पे सीखा है, जितना एक ने सीखा उतना ही दूसरे ने सीखा, तो इल्म में सारे ही बराबर थे, सुन्नत के इल्म में भी सारे ही बराबर थे, कुरान के पढ़ने में भी सारे ही बराबर थे। तो अब क्या, हिजरत तो उनके अंदर थी ही नहीं, तो अब क्या देखा गया कि जो अब उम्र में बड़ा है, तो ये यहाँ पे इसलिए कहा गया। ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ओवरराइड कर दिया कि नहीं अब इल्म देखने की जरूरत नहीं, बल्कि चूंकि अब ये सारी शरायत जो पहली है वो तो सारी सब में बराबर है, तो सब सब में बराबर है, तो फिर जैसे आप लोगों में से एक कुछ स्टूडेंट हो सारे एक जितने लायक हो, सारे एक जैसे हो पढ़ाई में, उसमें फिर देखा जाएगा कि कौन उम्र में बड़ा है। ठीक है, अच्छा जी, अब राजिया आप बताइए कि कुनूत वितर और कुनूत नाजला में क्या फर्क है? वालेकुम अस्सलाम।
आज ये सादा कुनूते वितर में फर्क ये है कि आज कुनूते वितर हम 1, 3, 5, 7, 9 किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, और उसमें ये होता है कि हम दो सुन्नत दो फर्ज पढ़
नहीं, बस आप दोनों को फर्क बता दें, फर्क बता दें दोनों को।
फर्क ये है कि वो उसके जो कुनूते वितर के अंदर हम सूरह फातिहा के बाद और एक सुन्नत के बाद हम फौरन दुआ मांगेंगे, उसमें हाथ उठाने नहीं होते, हम बिल्कुल मतलब सीने पे हाथ रख के ही दुआ मांगेंगे, और कुनूते नाजला में हम रुकू के बाद
ठीक है, सही है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जवाब तो बिल्कुल सही दिया। या मैं अपने सवाल को एक और तरीके से करती हूँ कि राहत आप बताएंगी कि कनूते वितर कब की जाती है और कनूते नाजला कब की जाती है?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कनूते वितर जब मतलब इशा के बाद आप पढ़े नमाज, तो अगर जिसको शक हो कि मैं उठ नहीं सकता तो तब वो वितर पढ़ ले, तो वितर पढ़ने ये पूछ रही है ना आप?
नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ दोनों दोनों कब कब पढ़ी है? नहीं नहीं, ये पूछ रही हूँ कि क्या हालातों के कनूते वितर क्यों हम पढ़े, कनूते नाजला क्यों पढ़े, मतलब मुझे आज मैंने अगर मसलन इशा पढ़नी है तो मैं इन दोनों में से कौन सी पढूं, कि क्या वजह होगी कि मैं कनूते नाजला पढूं या क्या वजह होगी कि मैं कनूते वितर पढूं?
कनूते वितर पढ़ना जरूरी है, उसमें आप कनूते नाजला पढ़ सकते हैं, कनूते नाजला जो है वो किसी भी नमाज में पढ़ सकते हैं, नफल फर्ज सुन्नत में हर एक में पढ़ सकते हैं।
अच्छा, वो क्यों पढ़ते हैं, ये मेरा कहने का मकसद है,
क्यों पढ़ते हैं कनूते नाजला?
जी,
कनूते नाजला कोई भी मुसीबत कोई भी हादसा आपके ऊपर आ रहे तो
शाबाश, बिल्कुल सही, हाँ ये मैं पूछना चाह रही थी, शाबाश। यानी कनूते नाजला क्या होती है कि जब कोई बला कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी दुख तकलीफ ऐसे, चाहे उम्मत पे हो चाहे इंसान के अपने ऊपर कोई हालात ऐसे आ गए हों, अल्लाह ताला माफ करे, तो अब वो जाहिर ही बात है अपनी जुबान में कुछ दुआएं मांगना चाहता है, मसनून दुआएं भी हैं और अपनी जुबान में भी कुछ दुआएं मांगना चाहता है। अपनी जुबान से मतलब यह है कि अरबिक में, यानी कि उर्दू में मांगने शुरू जाए, मगर जो मसनून अल्फाज नहीं है, कुरानी अल्फाज नहीं है, मिसाल के तौर पे है कि आज सीरिया के हालात क्या हैं, या किसी जगह कहत आ गया, या अल्लाह माफ करे जलजले आ जाते हैं, या ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है, या अपने ऊपर कोई ऐसे हालात कोई ऐसी सख्ती आ जाती है, तो फिर इंसान क्या कर सकता है, कुनूते नाजला पढ़ सकता है। कुनूते वितर तो हम आम दिनों में पढ़ते रहते हैं, जब आम रूटीन है तो कुनूते वितर पढ़े, कुनूते नाजला स्पेशली स्पेसिफिक किसी मसले कोई ऐसा ऐसी ऐसा मसला हो जाए उसकी वजह से, कोई सख्ती हो इसकी वजह से पढ़ी जा सकती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि बास जगहों के ऊपर बाकायदा तौर पे कुनूते नाजला फजर में पढ़ाई जाती है, और बाज दफा लोग परेशान हो जाते हैं कि ये इमाम साहब ने क्या किया इस वक्त के रुकू से खड़े हुए और उसके बाद ये इस तरह से कर रहे हैं, तो ये क्या फजर की नमाज में कोई चेंज है क्या है, तो वो कनूते नाजला कर रहे होते हैं, क्योंकि जब इस तरह के कोई हालात होते हैं जैसे मुसलमानों पे, तो आए दिन अल्लाह ताला माफ फरमाए कोई ना कोई मुसीबत चलती ही रहती है, तो उसके लिए फिर कनूते नाजला की जाती है। तो जैसे इन्होंने बता दिया है कि फर्जों में भी कर सकते हैं, सुन्नतों में भी कर सकते हैं, नफलों में भी कर सकते हैं, क्या वजह है कि हम किसी ऐसे से पूछूं जिनसे नहीं, क्या वजह है यासमीन इकबाल कि हम जब रमजान में देखते हैं वहां पे वितर पढ़ाते हुए, तो वो रुकू से उठ के फिर हाथ उठा के दुआ करते हैं, वो क्यों करते हैं, ऐसे वो वितर क्यों पढ़ रहे होते हैं? जी यास्मीन इकबाल,
السلام علیکم و رحمت اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی
میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی اب آ رہی ہے آواز.
استاد جب ہم ریگولر وتر پڑھتے ہیں تو وہ ہم تو جیسے چاہے ایک پڑھے یا تین پڑھے, وتر مینس آڈ. جیسے ہم نے ایک پڑھی تو ہم نے جب کوئی بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی بھی آیت پڑھ کے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے تو وہ پھر پڑھتے ہیں اللہم آذنی فیمن ہدایت والی دعا. اور اس کے بعد اگر قنوت ناظر جب پڑھتے ہیں یا خانہ کعبہ میں جو پڑھتے ہیں امام جو پڑھاتے ہیں وہ رکوع میں جا کے پھر کھڑے ہوتے پھر مگر اس میں اللہ اکبر نہیں کہتے, پھر وہ پوری دعا ہے جو امت مسلمین اور مسلمات کے لیے پوری مانگی جاتی.
تو وہ کون سی وتر پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں ہم نہیں, جب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں, جب ہم سعودیہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے وتر پڑھ رہے ہیں تو وہ کون سے وتر پڑھ رہے ہیں, کیوں ایسے پڑھتے ہیں وہ, کیا ان کا طریقہ یہ ہے؟
امت مسلمین کو جو دعا مانگتے ہیں وہ ہے نا اللہم اغفر للمومنین والمومنات,
صحیح صحیح,
وہ اس وقت وہ قنوت نازلہ کر رہے ہوتے ہیں.
شاباش, ہاں جی یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس وقت ریگولر وتر نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے عام وتر ہوتے ہیں, بلکہ وہ قنوت نازلہ کرتے ہیں, کیونکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہوتی ہیں اور کسی کسی جگہ کے نام لے کے انہوں نے دعائیں کرنی ہوتی ہیں. اب وہ والی دعائیں ہم عام وتر میں نہیں کر سکتے, یہ یاد رکھے کہ یہ جو عام وتر ہیں جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ کے اور اس کے بعد وتروں کی دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم کوئی اور ایکسٹرا دعا نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ایکسٹرا دعا کرنی ہے کوئی مثال کے طور پہ, اب جیسے رمضان کے اندر اور کتنی دعائیں اپنی مغفرت کی یا اور کئی دعائیں ہوتی ہیں جو کرنے والی ہوتی ہیں, لمبی چوڑی ہم نے دعائیں کرنی ہیں, تو پھر ہم وہ دعائیں قنوت نہیں پڑھیں گے, ہم رکوع میں جائیں گے, رکوع سے اٹھیں گے, اس کے بعد پھر ہم جتنی ہم نے دعائیں مانگنی ہیں 10 20 30 آدھا گھنٹہ آپ مانگتے رہیں دعائیں جتنی مرضی مانگے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر صحیح ہے. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ پھر ہم نے اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا نہیں کرنی رکوع سے پہلے, یا ہم وہ بھی کریں پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں پھر اٹھیں پھر وہ کریں, تو یہ انہوں نے وتر کے اندر پڑھ لی. جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے نا کہ فرض میں بھی یہ کر سکتے ہیں, سنت میں بھی کر سکتے ہیں, نفل میں بھی کر سکتے ہیں, تو انہوں نے وتروں کے اندر قنوت نازلہ کر لی. اب وتروں میں قنوت نازلہ پہلے بھی قنوت کریں پھر اس کے بعد دوبارہ قنوت کریں تو وہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی نا, تو اس لیے رکوع کر کے پھر اس کے بعد ایک ہی دفعہ ساری دعائیں کر لیں, یہ نہیں کہ پہلے دعا کریں پھر رکوع کریں پھر اٹھیں پھر دعا کریں. اس یہ بات سب کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ون ٹائپ کریں آپ, اگر آپ کو سب کو سمجھ آ گئی ٹو ٹائپ کریں, اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی میں پھر دوبارہ بتاؤں گی. الحمدللہ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہے. آپ کو نہیں سمجھ آئی, اچھا دیکھیں, اگر ہم نے ایک سے زائد دعائیں کرنی ہو, اپنی پرسنل دعائیں کرنی ہو, کوئی اور پریشانی ہو ہم نے دعائیں کرنی ہو, اور ہم کسی بھی نماز میں کر سکتے ہیں, لیکن فار ایگزامپل ہم وتروں میں کرنا چاہتے ہیں تو وتروں میں کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم قنوت نازلہ ہی کریں گے, دوسرے وتر چھوڑ دیں گے. پھر جیسے دوسرے وتر کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر سورت پڑھتے ہیں پھر وتروں کی دعا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہم کیا کریں گے, اسکپ کر دیں گے وتروں کی دعا کو, اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا کو وتروں سوری رکوع سے پہلے اسکپ کر دیں گے, صرف سورہ فاتحہ اور جو بھی آپ نے سورت پڑھنی ہے وہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں, رکوع سے اٹھ کے پھر ساری دعائیں کر لیں, اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی کر لیں اور بھی جتنی دعائیں آپ نے کرنی ہیں عربک میں, ٹھیک ہے, یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنی دعائیں کرنی ہیں آپ اردو میں ہی ہم شروع ہو جائیں, کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں, یہ نہیں کر سکتے. تو جتنی دعائیں کرنی ہیں, چاہے قرآنی دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, چاہے میری اپنی کوئی پرسنل اس کی دعائیں ہیں, ساری دعائیں آپ کر سکتے ہیں. جی نہیں نہیں نازلہ کے لیے طاق کی نہیں ہے, وہ تو وتر ہوتے ہیں جو طاق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, قنوت نازلہ وتر نہیں ہے, یہ اس کے اندر دعائیں لکھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ حسن المسلم کے اندر بھی قنوت نازلہ کی بہت کافی لمبی لمبی دعائیں ہیں, اور آپ چاہیں تو اس کو پکڑ کے بھی اور اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی ہے اب الحمدللہ سب کو. اچھا اب مجھے یہ بتائیں گے آپ کہ عشرت آپ بتائیے कि जब आप फितर पढ़ने लगेंगे तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, सूरत पढ़ने के बाद क्या करेंगे अगर आपने आम फितर पढ़ने हैं? कुनूत नाजला नहीं आप कर रही?
अच्छा ठीक है,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी उस्तादा, एक सूरा पढ़ेंगे फिर रुकू में जाएंगे और फिर अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदायत पढ़ेंगे या फिर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तहदीका, फिर सजदे में जाएंगे अगर हम बेहतर पढ़ रहे हैं तो।
ये तो यहाँ पे नहीं है इशरत। अच्छा मैं किसी और से पूछती हूँ, राजदा कालिया आप बताइए।
अस्सलाम वालेकुम उस्तादा।
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
हेलो आवाज आ रही है?
जी जी बताइए। शाबाश। और फिर रुकू? रुकू बाद में करना कि इससे पहले करके फिर ये पढ़े?
जी रुकू बाद में करना, पहले दुआ पढ़े फिर रुकू में जाए फिर सजदा करे।
शाबाश।
लेकिन वो रुकू के बाद वाली जो दूती कुव्वत नाज़ला वो कहलाती है, लेकिन रुकू से पहले आम वितर कहलाता है, कुल हुदे वितर कहते हैं उसको।
शाबाश इशरत। अब आपको समझ आई है कि अगर रुकू के बाद की वो तो कुनूते नाजला है, जो आम दिनों में हम पढ़ते हैं तो एवरी डे तो हम कुनूते नाजला नहीं ना पढ़ते, हम तो एवरी डे तो हम आम रुकू आम सॉरी वितर पढ़ते हैं। अब आम वितर के लिए आपको पहले नहीं है रुकू करना, आपको पहले दुआ पढ़नी है फिर रुकू में जाना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी था कि आप लोगों को बताओ। अच्छा आप सबको पता है कि एक तीन पांच सात इस तरह नौ इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं वितर, ये सबको मालूम है? अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ठीक है एक भी पढ़ लिया करें, लेकिन कभी हम पांच भी पढ़ लिया करें, सात नौ भी पढ़ लिया करें। ठीक है। अच्छा जी यहीं पे पहल टॉक के इसी पे, क्योंकि आप लोगों को ये बताया नहीं हुआ, आप लोगों को पता है ना वितरों का, तीन वितरों के दो तरीके हैं, दोनों ही सही हैं, ये भी आपको पता है ना। अच्छा चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये वाली जो बात है ना कि जो है कि सूरह फातिहा और उसके बाद जो भी आपने किरात करनी है उसके बाद आपने ये दुआए कुनूत पढ़नी शुरू कर देनी है, ये हजरत अनस की रिवायत जो बुखारी में है उससे ये साबित है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए कि फिर कोई आपको इतराज करे कि आप ये क्या तरीका आपने इख्तियार कर लिया, तो आपके पास सबूत होना चाहिए। और यहीं पे आके हमारे लिए लोगों के लिए एक बड़ी वो हो जाती है बात कि ये तो कोई नहीं, हमने तो आज तक इस तरह से नहीं देखा, हमने तो आज तक इस तरह से कभी सुना ही नहीं है, फलां नहीं है। तो इसी बात के ऊपर मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें जब कुरान और हदीस सामने आ जाए तो उसके बाद ना किसी इमाम की बात, ना किसी आबाओ अजदाद की बात, ना किसी की भी बात क्या वैलिड रहती है? जब हम बुखारी में देख लें, अब उसको भी हम कह दें नहीं हमने नहीं ये मानना, अगर रफा या दैन है तो इतनी लातादाद उसकी रिवायात है रफा या दैन के ऊपर, लेकिन हम मजाले के टस से मस हो जाए, क्यों नहीं होते? ये नहीं कि मैं ये बिल्कुल कोई फतवा नहीं दे रही कि दूसरों की नमाज नहीं होती जो रफा या दैन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये मैं नहीं कुछ भी कह रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि देखें जब एक ज्यादा सही चीज हमारे सामने आ जाती है, उसको अपनी आंखों से पढ़ लेते हैं, फिर भी अगर हम हीलो हुज्जत करते रहें और ये कहें कि नहीं हमने तो हमारे कारी साहब ने हमें इसी तरह सिखाया था, हमारी अम्मी तो ऐसे ही पढ़ती थी, तो ये सही नहीं है। फिर अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं ना कि चाहे उनके जो आबाओ अजदाद है वो कोई अकल ना रखती हो और उनको हिदायत पे ना हो फिर भी उनको फॉलो करते रहें। तो इसलिए जब सामने आ जाए बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है वाजे तौर पर और एक से ज्यादा हदीस है, फिर हमें नहीं चाहिए कि हम फिर भी यही कहें कि नहीं हमने वही काम करना। तो रफाया दैन के बारे में बहुत सारी अहादीस है, और रफाया दैन कब कब करना होता है ये सबको पता है ना, शुरू में तो आप तकबीर तहरीमा करते हैं, उसके बाद रुकू में जाने वक्त, रुकू से उठते ही और तहियात पढ़ के जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं तो खड़े होते ही सबसे पहले आपने रफाया दैन करना है। सही है ना। अब मैं इसके अंदर कोई ना कोई फिरके की बात कर रही हूँ ना किसी चीज की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं ये बता रही हूँ बुखारी में ये है। अब उसके आगे भी अगर किसी को कोई एतराज हो तो फिर अब इमाम बुखारी पे इतराज कर सकते हैं या किस पे कर सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर वो खुद ही देख लें कि जब वाज़े हदीस भी सामने आ जाए तो फिर भी वो उसी काम को करना चाहते हैं जो उनके हमेशा से होता चला आ रहा है। क्योंकि हमारे लिए भी देखें, हम उनको क्या कहते हैं कि वो इस्लाम क्यों नहीं लेकर आते थे, वो क्यों ऐसे करते थे, हम तो छोटी छोटी चीजें भी चेंज करने को तैयार नहीं होते जो अब हम जो हमारे वालदैन या हमारे हमेशा से हमने देखी होती है, उनको चेंज करना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। हालांकि नमाज है, देखिए अब उसके अंदर भी वाजे तौर पे सामने देख लिया, उसको भी चेंज करने में इतनी ही लोग उज्जत करते हैं, इतने सवाल करते हैं, इतनी फिर बातें बनाते हैं, फिर नहीं ये कैसे, ये क्यों, ऐसे वैसे, और पढ़ के भी फिर भी अपने तरीके से ही पढ़ते जाते हैं नमाज, फिर भी छोड़ते नहीं अपना तरीका। अब वजह क्या है, अब वो ये तो वही लोग बता सकते हैं कि क्या वजह है कि वो फिर क्यों करते रहते हैं ऐसे। फ्रॉम अरेबिक पीपल रफाया दें, अरबिक पीपल की से है ये रफाया दैन। हालांकि जब अरबिक ना नॉन अरबिक, हमने ना अरबी को देखना ना अजमी को, हमने तो देखना है कि ये देखे बुखारी में ये लिखा हुआ है, बस दैट्स इट, मेरे लिए इतना ही काफी है, सही है ना जी। रफाया दैन उनसे आपने सीखा, लेकिन फिर भी चले आपने उनसे सीखा, दलील होनी चाहिए ना। आपने ये नहीं देखना अरबी लोग ये करते हैं तो मैं भी करने लगूं, ये ना देखे, ये देखे दलील कहां, वो अरबिक भी बंदा गलत बात गलत चीज कर सकता है। आपने दलील देखनी है, और जब दलील सामने आ जाए तो फिर कोई बात नहीं करनी। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जब मेरी बात के सामने तुम्हें कोई वाज़े हदीस मिल जाए तो मेरी बात को दीवार पे दे मारना, ये आइम्मा कराम का तरीका था। लेकिन हम इतने पक्के हैं कि मजाल है कि हम टस्से मस हो जाए, तो इन चीजों को फिर सोचना चाहिए कि जब हम ये पढ़ रहे हैं तो फिर हम इस पे अमल भी कर रहे हैं या सिर्फ ये ऐसे ही जस्ट एक एक्सरसाइज है जो हम करते रहते हैं। तो इसी तरह फिर आप नौ वितर, इसी तरह पांच वितर, सात वितर, इनको भी कभी कभी कोशिश करें कि अगर आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे कि वितर क्या है, वितर क्या फर्ज है, सुन्नत है, नफल है, क्या है? नाहिद सिद्दीकी आप बताएंगे। वालेकुम
अस्सलाम।
जी वितर क्या है, फर्ज है कि नफल है?
नहीं, फर्ज नहीं, वितर नफिल है कि मुस्तहब है।
शाबाश शाबाश, वेरी गुड। वितर जो है ना फर्ज नहीं है, मगर ऐसा मुस्तहब है, ऐसा मुस्तहब है कि कई देखे सुन्नतें भी ऐसी हैं ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की हालत में भी नहीं छोड़ी, और उनके अंदर क्या है जैसे कि मिसाल के तौर पे फजर की है सुन्नतें। अब ये जरूरी नहीं है वो पढ़ना, यानी आप उनको अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं आप कह सकते कि नमाज नहीं होगी, मगर उनके इतना बड़ा अजर है कि हम उनको फिर क्यों छोड़ें, ठीक है ना। अब बात ये नहीं है कि नमाज तो हो गई ना, वो सही है आपकी नमाज हो गई, लेकिन वो तो वैसे आम हालात में भी हो गई, लेकिन जो आप सफर में हैं अगर और आप ये पढ़ लेते हैं तो उसका अजर बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई चीजों को सफर में भी जारी रखा, और लेकिन इस वजह से वो फर्ज नहीं बन गए, ठीक है, फर्ज नहीं बन गए, वो रहे तो नफली वो ही, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि नफलों में भी बाज नवाफिल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यानी सवाब के उसमें बहुत ज्यादा सवाब है, ठीक है जी। अब इंशाअल्लाह ताला सर आ चुके, तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है मुसाफिरीन करेंगे, और इंशाअल्लाह आप इसको देख के आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ तक ये मुकम्मल हो गई पिछली जो थी हमारा चैप्टर, तो अगली दफा हम इसको देखेंगे, आप इसकी तैयारी करके आइएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कथीरा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।